Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Swarup dekho uska to vigyan hi vigyan hai, anand hi anand hai. Isliye chit ghan anand ghan use kaha jata hai. Wo hai Brahma. Aur wahi to इन चक्षुरादि उपाधि के साथ संबंध करके कभी दृष्टा के रूप में तो कभी ग्राता के रूप में तो कभी रसयिता के रूप में भास रहा है। तो ये जो विज्ञानात्मा पुरुष है यानी चिदघन आत्मा है जो उसे स परे अक्षरे यहां पर जो स ये सर्वनाम है उस शब्द से लीजिए तो स यानी वो शोधित त्वमर्थ शोधित जो त्वमर्थ है विज्ञानात्मा पुरुष शब्दित उपाधि से विविक्त जो उपाधि के साथ मिलने से कभी कर्ता के रूप में कभी दृष्टा के रूप में कभी श्रोता के रूप में कभी वक्ता के रूप में प्रतीत हो रहा है। वो अपने स्वरूप से क्या है तो विज्ञानात्मा पुरुष है और वह विज्ञानात्मा पुरुष जब उपाधि उसकी विलीन हो जाती है विवेक से उपाधि से विवेक उसका करते हैं तो उसका निर्धारण किस रूप में होगा उपाधि तो अनात्मा है प्रकृति है इस रूप में निर्धारित हुई और ये जो उपहित दृष्टादि रूप से भास रहा था चक्षुरादि उपाधि से संलग्न होकर के वह चेतन उसका अंतिम पर्यवसान किस में होगा उसका पर्यवसित रूप क्या है उपाधि मात्र से उसे अलग कर दिया वो कहां स्थित होगा तो उपाधि तो चली जाएगी प्रकृति में और उपहित चैतन्य ये जो प्रकृति से उपहित ब्रह्म है तुरीय उसमें स्वरूपतः मिल जाएगा। जैसे नाम रूप छोड़ करके नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो उस समय वह समाप्त हो जाती है या रहती है लेकिन उनका नाम उस समय समुद्र यही नाम होता है समुद्र इस नाम से ही जानी जाती है और समुद्र रूप से ही हम उन्हें देखते हैं समाप्त नहीं हुई लेकिन उनको समुद्र से अलग सा दिखाने वाली जो उपाधि है उस उपाधि से विनिर्मुक्त हो गई। ऐसे इन उपाधियों से विविक्त जो त्वमर्थ है वह जो ब्रह्म है जिसे मुंडक उपनिषद में पर अक्षर शब्द से कहा गया मुंडक उपनिषद में दो अक्षर है ना एक माया को भी अक्षर शब्द से कहा गया है और ब्रह्म को भी अक्षर शब्द से कहा गया लेकिन पर सत्य अक्षर है ब्रह्म उसे यहां पर कहा जा रहा है कि स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो परे आत्मनि यानी परमात्मा में तो परमात्मा तो त्वमर्थ भी है उपाधि से पर आत्मा उसे पर आत्मा कहा जाएगा लेकिन ये अक्षर शब्द का भी यहां पर प्रयोग है। पहले त्वमर्थ का शोधन करते समय केवल आया था तत्सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठते सात्विक अंडिका के अंतिम वाक्य में लिखा था परे पर आत्मनि, और यहां पर एक अधिक जोड़ा जा रहा है अक्षर शब्द को भी, यानी शोधित तदर्थ के साथ शोधित त्वमर्थ का अभेद बताने के लिए, एकत्व बताने के लिए यहां शोधित तदर्थ लेना है, ये दिखाने के लिए लिखा कि अक्षर एक विशेषण अतिरिक्त दिया है, और अक्षर शब्द का अर्थ निकलता है व्यापक, अपरिछिन्न, अविनाशी, ये सब अक्षर शब्द के अर्थ है। न क्षरतीति अक्षर, ऐसी उत्पत्ति करते तो अक्षर शब्द का अर्थ होता है अविनाशी, यानी कालतः अपरिछिन्न, और अश्नुते इति अक्षरम, ऐसी अक्षर शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है देश और वस्तु से अपरिछिन्न। तो देश, काल और वस्तु, इन तीनों का भी जिसमें कोई भेद नहीं है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत भेद त्रय रहित अद्वितीय, वो जो परमात्मा है वो है शोधित तदर्थ, और उसमें सब संप्रतिष्ठते, तो स यानी शोधित त्वमर्थ, और उसका संप्रतिष्ठान यानी अवस्थान किसमें होता है, जैसे घटाकाश की उपाधि घट से आप अलग समझते हैं घटाकाश को, तो वह अपनी उपाधि से विविक्त घटाकाश, घट से विविक्त घटाकाश, वो किस रूप से निश्चित होता है, महाकाश के रूप में निश्चित होता है। घट फूट जाए तो घटाकाश कहां गया, महाकाश रूपी है। घट फूट जाए ये तो कहा जाता है समझने के लिए, लेकिन घट उपाधि के रहते हुए भी, घट को फोड़े बिना भी आप घटाकाश को महाकाश रूप समझ सकते हैं विवेक से, यदि घट रूपी उपाधि को बनाए रख करके भी खाली समझ लें कि घट अलग है और उससे घिरा हुआ अवकाश उससे अलग है, तो आपको महाकाश रूप से ही प्रतीत होगा। मठाकाश को महाकाश रूप समझने के लिए मठ को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बिना तोड़े भी बुद्धि से उसे अलग समझा जा सकता है। ऐसे ये जो तीनों शरीर हैं, तीनों शरीरों से घिरा हुआ चैतन्य ब्रह्म वो जीव है, तीनों शरीरों से उपहित, और उसे ब्रह्मरूप समझने के लिए तीनों शरीरों को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। ऐसे घट फूट गया तब घटाकाश महाकाश हुआ, ऐसा तो एकदम शुरू में कहा जाता है, इन घट के रहते हुए भी घटाकाश महाकाश ही है ये समझना है। ऐसे इन तीनों शरीरों के रहते हुए भी ये तीनों शरीरों से उपहित चैतन्य ब्रह्म रूप ही है, ऐसा निश्चय, ये है पराविद्या। उसे यहां पर बताया जा रहा है कि स परे अक्षरे आत्मनि, पर अक्षर आत्मा शब्द से लेना परमात्मा को, निर्विशेष ब्रह्म को, निरुपाधिक ब्रह्म को बताने के लिए परे अक्षरे आत्मनि शब्द का प्रयोग है, और स शब्द का प्रयोग है शोधित त्वमर्थ को बताने के लिए। और ये शोधित त्वमर्थ जब आप तीनों उपाधि से उसका शोधन करोगे तो उस शोधित रूप का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही प्रतीत होगा, निर्विशेष ब्रह्म ही अनुभव में आएगा। उसका पर्यवसान होगा किसमें? ब्रह्म में। वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म रूप ही है। जीवो ब्रह्मैव न अपर, वो भिन्न अपर यानी भिन्न नहीं, ब्रह्म ही है, यह निश्चय होगा। ये यहां वाक्यार्थ को बताया गया है, तत्वमसि वाक्यार्थ को बताने वाला स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते ये वाक्य है। तत्वमसि वाक्य का जो अर्थ है वही प्रश्नोपनिषद में इस वाक्य का अर्थ है। इसलिए प्रश्नोपनिषद में महावाक्य कौन सा है ये पूछेगा कोई तो क्या बताओगे? हाँ, स पर अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये प्रश्नोपनिषद का महावाक्य ही है। महावाक्य किसको कहते हैं? हाँ, जीव ब्रह्म की एकता बताने वाले वाक्य को कहा जाता है महावाक्य। यानी कि बहुत बड़ा वाक्य होगा उसे महावाक्य कहा जाएगा। जो ब्रह्मात्म एकत्व का प्रतिपादन करे, ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति करा दे, उसे कहा जाता है महावाक्य। इसलिए कि उसके अर्थ का ज्ञान जिसको होता है उसको सब कुछ उपलब्ध होता है, कुछ भी उपलब्ध करना बाकी नहीं रहता। तो जिस वाक्यार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जिस वाक्य का अर्थ ज्ञान प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्तव्य शेष न रहे, सब कुछ प्राप्त हो जाए, उस वाक्य को कहा जाएगा महावाक्य। तो तत्वमसि वाक्यार्थ का ज्ञान होने के बाद, ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ अविद्या की निवृत्ति होती है, मनोनाश होता है। वेदांत में तीन कार्य साथ साथ होते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, साक्षात्कारोदय, अविद्या की निवृत्ति और मनोनाश यानी वासनाक्षय। और कल बताया था कि ये आपका जो मन है यही तो संसार है, बंधन है, बंधन कोई दूसरा नहीं है। चित्तमेव तु संसार, ये कहा गया मैत्री उपनिषद में। संसार का अर्थ है बंधन, ये चित्त ही है बंधन। और इसका नाश हो गया किससे? तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान से। तो बंधन का नाश हो गया, आप नित्य मुक्त हैं, नित्य मुक्तता की अनुभूति होगी। तो उसके बाद फिर कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता, वो कृतकृत्य होता है, कुछ कर्तव्य भी बाकी नहीं होता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी उससे बढ़कर के लाभ जो नहीं मानता। और ये तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, तो कृतकृत्य हो जाता है, कुछ भी कर्तव्य अपने लिए उसका शेष नहीं रहता। तो ये एक छोटे से वाक्यार्थ ज्ञान मात्र से होता है, इसलिए वो महावाक्य है। जीवन में जो महान प्रयोजन है, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कराता है। जिस वाक्य के वाक्य का अर्थ ज्ञान, वह वाक्य है महावाक्य। ऐसे स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, इस वाक्यार्थ की अनुभूति हो जाए तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है। इसलिए इस प्रकार ये पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान बताया। अब इस ज्ञान का फल बताया जा रहा है दशम मंत्र कंडिका में। परम एवाक्षरम प्रतिपद्यते स यो हवै तत् अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेश श्लोक। तो इसमें बताया जा रहा है कि परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते स यो हवै तत् अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते। प्रतिपद्यते का अर्थ होता है प्राप्नोति, प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? तो परम एव अक्षरम, परम अक्षर है परमात्मा ब्रह्म, तो ब्रह्म को ही प्रतिपद्यते यानी प्राप्त कर लेता है। कौन? तो स, स परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते, ये परमात्म ज्ञान का फल बताया जा रहा है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा प्राप्त हो गया जानने मात्र से। मुंडक उपनिषद की व्याख्या है ना ये प्रश्न उपनिषद, इसलिए मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म रूप ही होता है। वही यहां पर बताया गया कि स परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते, तो स यानि ज्ञानी, हाँ, तो स पदार्थ को ही आगे बताने के लिए वाक्य है कि यो हवै तत् अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम प्रति वेदयते, यानी जो तत् यानी वो अच्छाय, अच्छाय में छाया शब्द का अर्थ है कारण उपाधि, और उस कारण उपाधि से विविक्त और अशरीरम शरीर त्रय से भी जो रहित है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से भी विलक्षण है, और लोहित कहा जाता है लाल रूप वाले को, तो ब्रह्म का कैसा रूप है? तो ब्रह्म न तो लोहित लाल रूप वाला है, न नीले रूप वाला है, न पीले रूप वाला है, वह रूप रहित है, अरूप है। अरूप दिखाने के लिए लिखा अलोहितम, तो लोहित लाल रूप वाला हुआ, ये है आपके सब रूपों का उपलक्षण, इसलिए सब रूप रहित अरूप इस अर्थ में अलोहितम शब्द है। तो जिस कारण से उसका स्वतः कोई रूप नहीं और उसकी कोई उपाधि नहीं, इसलिए स्वतः भी अशुद्धि रहित है, स्वतः शुद्ध है, और उपाधि भी कोई न होने से दूसरे के दोषों से भी दूषित होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कैसा है वो? शुभ्रम, शुभ्रम का अर्थ कहते हैं शुद्ध। और ऐसा जो अक्षर है वो है ब्रह्म, और इसको जो जानता है किस रूप में? मैं के रूप में। इस ब्रह्म को मैं के रूप में जो जानता है स परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते, ऐसे पूर्व के साथ अन्वय है। तो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति मुंडक उपनिषद ने कहा, और उसके व्याख्यान रूप प्रश्न उपनिषद में कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार के नित्य शुद्ध अक्षर तत्व को जानता है वह उसी अक्षर तत्व को प्राप्त करता है। नदियां समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र भाव को ही प्राप्त करती हैं। ऐसे मैं के रूप में इस शुभ्र अक्षर शब्दित परमात्मा को जो जानता है वह परमात्म रूप हो जाता है, उस रूप से अभिव्यक्त होता है। ऐसा क्यों? कि वो परमात्मा ही है। ये नहीं कि वस्तुतः ही आप किसी से भिन्न है और उसको जान लिया तो जानने मात्र से तद्रूप हो गए। नहीं तो गाय भैंस को जानते हैं, जा रही है सामने से, आंख खुले हैं तो दिखेगी ही, वो तो है मनुष्य। और पशु को देखा, और यदि खाली वस्तु का ज्ञान होने मात्र से जिस वस्तु का आपको ज्ञान हुआ उस वस्तु रूप आप हो जाते हो, ऐसा माना जाएगा। यदि तो गाय भैंस को देखते हैं तो गाय भैंस थोड़ी हो जाते हैं, फूल को देखा तो फूल थोड़ी बन जाता है। ऐसे ब्रह्म को जानने मात्र से ब्रह्म हो गए, ऐसा श्रुति कह रही है। का अर्थ है कि तदासीत, वो पहले भी हम ब्रह्म रूप ही हैं, पहले से ब्रह्म रूप ही हैं, खाली अज्ञान से अब्रह्मता की हमें भ्रांति थी। ये नहीं कि ब्रह्म रूपता को हमने नहीं थे वो बन गए, पहले ब्रह्म नहीं थे और अब ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म बन गए, ऐसा नहीं। ब्रह्म ही थे, अब्रह्मता की भ्रांति थी, वह भ्रांति मिट गई। भ्रांति की निवृत्ति हुई तो माना गया कि हम ब्रह्मरूप हो गए। इसलिए परमात्मा को प्राप्त किया का अर्थ, पहले परमात्मा प्राप्त नहीं था, ज्ञान से नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। ज्ञान केवल क्या करता है, जो नित्य उपलब्ध है उसकी उपलब्धि नहीं कराता, उपलब्धता अनुपलब्धता की जो भ्रांति है, अप्राप्ति की जो भ्रांति है उसे हटाता है। भ्रांति हट गई तो ये नहीं हुआ कि अब ज्ञान हुआ तो अब ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ, पहले ब्रह्म भाव नहीं था। भ्रांति मिटने पर आपको ये लगेगा कि कभी भी हम ब्रह्म से भिन्न थे ही नहीं, हमेशा ब्रह्म रूप ही थे, पहले भी ब्रह्म रूप थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, हमारा यही स्वरूप ही, इसको हमसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये इस अनुभूति पे पहुंचेंगे, लेकिन ये अज्ञान की निवृत्ति को कहा गया ब्रह्म की प्राप्ति। ज्ञान करेगा क्या? अज्ञान को निवृत्त करेगा। अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त होगा और फिर वह ब्रह्म हमेशा हमेशा आपके स्वरूप के रूप में स्वयं ही भासित होता रहेगा। ये यहां पर बताया जा रहा है परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते से। अब ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ तो पहले से विलक्षणता क्या होगी? अज्ञान अवस्था में और ज्ञान अवस्था में कुछ विलक्षणताएं होती हैं कि नहीं होती है? हो जाती, लेकिन किस में विलक्षणताएं होगी? बुद्धि में। तो ये कहा जाता है कि सर्वज्ञो भवति, सर्वज्ञ सर्वो भवति, आपकी अनुभूति में अंतर पड़ेगा। अज्ञान अवस्था में तो कर्मफल भोगने के लिए कर्मफल का आयतन, कर्मफल भोग का आयतन तथा उपकरण के रूप में जो कार्यक्रम संघात है इसी में स्थित होकर के मान लिया करते थे कि इसको ही अपना स्वरूप, और वेष्टि बुद्धि की अपनी सीमित शक्ति है, ज्ञान कराने की, उसमें जितना ज्ञान होगा उतने ही ज्ञान का ज्ञाता अपने आप को समझते थे। लेकिन जैसे ही ब्रह्म की आत्मरूप से अनुभूति होगी, अहंता इस शरीर में न रह करके अधिष्ठानभूत ब्रह्म में रहेगी, तो ब्रह्म सर्वावभाषक है कि नहीं? सर्वावभाषक है ब्रह्म। तो सर्वावभाषक ब्रह्म को जो मैं समझ रहा है वह सबका अवभाषक मैं हूं, ऐसी अनुभूति करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो उसी को बताया जा रहा है कि सर्वज्ञ भवति, वो सर्वज्ञ हो जाता है, यानी सबका अवभाषक जो चैतन्य है उस रूप से निष्पन्न होता है। अभी तक तो हमारी इंद्रिया, हमारा मन बुद्धि जितने विषयों को ग्रहण कर पाते थे अज्ञान अवस्था में, उतने का ही अपने आप को अवभाषक अनुभव करते थे अज्ञान अवस्था में। और जब ज्ञान होगा तो सर्वावभाषक ब्रह्म मैं हूं ऐसी अनुभूति करने वाला अपने आप को ये समझेगा कि मुझे छोड़कर के दूसरा कोई अवभाषक है ही नहीं, मैं ही अवभाषण कर रहा हूं। इसलिए कहा कि सर्वो भवति, यानी ब्रह्मरूप होकर के, ब्रह्मरूप से निष्पन्न होकर के सर्वावभाषक वो होता है। ये ब्राह्मण भाग ने कहा ब्रह्मज्ञान का फल। इसी को मंत्र भाग से भी संवादित किया जा रहा है, इसलिए कहा जाता है तदेश श्लोको भवति। तो ये श्लोक आगे बताया जा रहा है, इस मंत्र, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।